उनके भगवान का कैलाश पर्वत से उठे वो दीनानाथ इस सृष्टि के परमात्मा शंकर इतनी शक्ति रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक स्वरूप है, एक शक्ति है, मिला जुला जुला है बस और कुछ नहीं बनते। अगर विष्णु जितनी शक्ति सोलह साल कला संपूर्ण पालने के रखते हैं तो उतनी शक्ति शंकर भगवान के पास है, एक पलक के इशारे से संसार को मिटाते हैं, इतनी शक्ति के मालिक है। लेकिन आज उनके मालकों के मालक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं, अब सिर्फ ब्रह्म आ रहे हैं जिनकी वो हमेशा साधना में रहते हैं। अपनी कैलाश पर्वत से उठे विभूति शरीर पे रमा के जैसे एक साधु किसी के द्वारे पर भीख मांगने जाता है, भागवत को पढ़ो, शिव पुराण को पढ़ो, भस्मी रमाई है शंकर ने अपने सारे शरीर पर भस्मी रमाई है, बालों को खोल करके हाथ में डमरू और चिमटा लेकर के धार मृत में नंद जी के घर डमरू एक दम उनके आवाज सुन करके अब श्री कृष्ण रो रहे, क्यों? उनके भाई चीफ मिनिस्टर आया है उनसे मिलना चाहते, अब रो रहे थे। ये श्रोता समझ रही है कि इस भिखारी के डमरू से डर के मेरा लड़का, भाई वो मां है उसे क्या पता, मां नहीं पहचानेगी, घर वाले नहीं पहचानेंगे ये कौन है, घर का लड़का बाप कहेगा, माँ उसको पुत्र कहेगी, पत्नी उसको पति कहेगी, वो नहीं जान सकते ये तो वो शरीर दे। माँ डर के बाहर आई, एकदम पाव वहां रह गया, शंकर भगवान के दर्शन करना खाला जी का घर नहीं, अगर यहाँ आ जाए तो मेरे ख्याल में सब हो चुके मिल जाए, इतने विभूति इतना सुते इतनी लाल आंखें, क्योंकि विष पी रखा है, उनकी विश्व भरी आंखों में कोई दर्शन नहीं कर सकता, इतने तेज में पुंज। अब यहां यशोदा ने दर्शन के एकदम डर गई, बड़े प्यार भरी आवाज से जितना प्यार हृदय में ला सकते थे ला करके शंकर माता भिक्षा दे दो, अभी बात पूरी नहीं कर सके थे, किसकी भिक्षा, उनके दर्शन, ये कह नहीं पाए थे कि यशोदा ने समझा कोई भिखारी बाबा है, अंदर से नुकरानियों को आवाज देती है री हर गाओ नौ हीरे के था, शंकर भगवान की आवाज सुन के हंसने लगा, वो बेचारी नुकरानियां हीरों के था लेके आती, शंकर भगवान के सामने पेश किए जाते हैं, साथियों जो खुद रत्नों पे देने वाले हैं क्या वो हीरे मांगने आए थे, भागवत को संशय मिटाओ तभी तो दिल को ठोकर लगे कि ओहो हम किस झूठ को परमात्मा बनाते बैठे हुए। शंकर भगवान कहते माता यशोदा नहीं, मुझे ये हीरे नहीं चाहिए, मुझे अपने लाला के दर्शन, ना 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 बाबा, ओ बाबा मां डर रही है कि जिसकी शक्ल देख के मैं डर रही हूं मेरे लाला तो घबरा रहा है, तो साफ शंकर कहते हैं कि नहीं, अब उसको क्या बताएं, ये मेरा जन्म जन्म का मीत, अब दुनिया मीत का अर्थ ही नहीं जान सकती, मीत कहते हैं प्रीतम को, जाकर पढ़ो जरा भागवत को पता चले मीत कहते किसको है, मीत मित्र को नहीं कहते, मीत प्रीतम को कहते, मेरे जन्म जन्म का प्रीतम से वो आया है मुझको दर्शन करा। यशोदा बड़े घबराती है, बड़ा धीरे किया, अब अंदर गई, कांपते हुए हाथों के साथ श्री कृष्ण जी को उठाया, छाती से चिपका लिया, तौलिया दे दिया, बाबा डमरू बांध के ले भी आई है, प्राण खुश्क हो रहे कि अगर साधु की नजर लगी ना जाने मेरे लड़के को क्या हो जाएगा, और वो जानती नहीं, जैसे ही श्री कृष्ण जी बाहर आए चुप करके रोना, तो शंकर कहते देखा तुम कह रहे थे मेरे से डर के रो रही है, नहीं वो मुझे दर्शन देने के लिए रो रहे थे, माता दर्शन करा, अब वो दर्शन तो कराती है, तू से छोड़ती नहीं उसे, डर रही है नजर ना रख, थोड़ी सी सीधी बात निकल देख ले, लगे नहीं, शंकर कहते हैं यशोदा ऐसा ना करो मुझे दर्शन कराओ, तब के दिल जब आगे किया अब दर्शन शरीर के कभी नहीं, बस वो नजर से बस ये दर्शन, बस एक झलक जो वो नजर प्यार की पड़ी मुग्ध हो गए, नैनों से नैन मिले रह गए। पढ़ो भागवत को मेरे साथियों, पढ़ो लेके अपनी जटाओं को श्री कृष्ण के चरणों से छुड़ाते, उनकी धूली ले लेके चूमते हैं। प्यार की नजर से जब नजर मिलती है तो कौन था, ये वो शक्ति थी जिसका के जन्म और मरण नहीं होता, ये वो शक्ति थे जिनके चरणों से शंकर भगवान अपनी जटाओं को धोते हैं। क्या वो विष्णु थे, क्या वो वैकुंठ के नाथ थे? साथियों दोष तुम्हारा भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान आज दिन तक दुनिया में आया नहीं था, तो बता कौन देता। ये है वो कलयुग में बुद्ध निष्कर्ष करता श्री प्राणनाथ जी की वाणी जो आज आप सुन रहे हैं। मेरी क्या चरणों से प्रणाम करके इशारा हुआ, बस दंडवत प्रणाम किया, थूली मस्तक पे लगा, वैकुंठ के नाथ वापस। आइए अब क्या होता, जब आयु कुछ बढ़ने लगी, प्रेम की लीलाओं के रस सागर उमड़ने लगे, अब धीरे धीरे बालना, अब वो तो एक और वो की हजारों, अपने लड़कों के लिए तो शायद इतनी इतनी अच्छी चीजें वो बाजार से नहीं लाती, जब बाजार में जाती है सुंदर से सुंदर चीजों पर निगाह डालती है, किसके लिए? ओ मार टोकरियों की टोकरियां खिलौने की, साधो सामान अनेकों, एक गोपी उठा के ले जाती है, दूसरी तरसती है कब लेके आए। भागवत साफ पुकार के कहती है कि माता यशोदा के स्तनों से दूध बहता रहता था, लेकिन गोपियां कृष्ण को यशोदा को देती ही नहीं। क्या उनके घर अपने लड़के नहीं थे? साथियों ये लड़का नहीं था, ये उनके प्राणों का नाथ था। ऐसी वो ब्रज की लीला जब 5 वर्ष हो गई तो आ गए हम, कौन आ गए? सारी दुनिया की अकल के मालक आ गए। हमारी अकल तो इतनी सी है ना, और हम उस इतनी सी अकल को समझते हैं कि हमारे से बढ़ के किसी की, बिल्कुल हर इंसान समझता है। कैसे? क्योंकि अक्सर गाड़ी में सफर करने का मौका मिलता है, मैं उससे आगे मारवाड़ में जा रहा था, एक आदमी पहली बार शायद गाड़ी में आया हो, मैं तो जानता, वो गाड़ी में बैठ गया लेकिन अटैची उसने सिर पे रखी थी, बैठ गया गाड़ी में। किसी ने पूछा वो भागी वहां से गाड़ी में, जब बैठ गया अटैची ऊपर रख ले, कह लगा काम वक्त है तू, अभी टीटी आके मेरे से कितना किराया ले लेगा। मैंने अपना किराया दिया, अटैची का नहीं दिया, मैं अपना भी भाग गाड़ी से डाल दू और अटैची का भी डाल दू, ये कैसे हो सकता? वो हालत हमारी, हम अपनी अकल के साथ दुनिया में सफर कर रहे हैं। वैसे तो हम समझते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा और परिवार का करने वाला, बोलो अटैची से जिस वक्त बच्चा बीमार होता है उस वक्त परमात्मा का करा जाता है, अगर मर भी जाता है तो परमात्मा को क्यों भूलते। जिसने अमानत दी थी, अगर अमानत वाला कोई हमारे पास कोई चीज रख दे अमानत, तो क्या कहते हैं? बाबा और किसे को रख रहे, साधे को न रख, बोलो। और आज परमात्मा से क्या कहते हैं? सारा कुछ मेरे पास ही रख दे, और किसी को न रख। और अगर वो कह रहे हैं अच्छा भाई तुझे 10 चीजें अमानत दी हैं, 2 मुझे वापस लौटा दे, क्या मर गई भाई? अरे क्यों मर गई, किसको मर गई, कमत किसको लौटती है? अरे उसकी अमानत थी ली, लौटती किसको है? इंसान अपनी अकल से दुनिया में बसा जिंदगी करना चाहता है, इसलिए दुखी है। क्यों? वो समझता है और परमात्मा को गालियां निकाल देता है। हाँ देखा, परमात्मा भी बड़ी अकल वाला है, बदमाशा चोरा रुचे तो इतना कुछ देते, ऐसी भक्ति करने एहसान करने, मंदिर रोज आने एहसान करने, माला भी फेरने एहसान करने, भोग लवाने, ऐसी दुखी है। अपनी अकल से जीना चाहते, हमारी जैसी अकल वाला एक पेड़ के नीचे सफर करता करता सो रहा था, वहां नदी का किनारा था, देखा कि तरबूजे जिसको हिंदवाड़े पंजाबी में कहते हैं लाल लाल निकलते हैं, ऊपर से इतना बड़ा होता, तो वो बेल के साथ लगा हुआ था, बेचारा दुखी था, कह लगा देख लो परमात्मा की अकल, बेल से बनाई अड्डी तू लाते है परमात्मा की अकल, वे लोग दुनिया पंडित लुट गए कहते अकल परमात्मा की, परमात्मा की बड़ी अकल। अब बेचारा सो गया आम के तरह, अब उस श्रावण असु का महीना था, हम यहाँ लगी हुई थी, इतनी इतनी बड़ी ऊंची थी, अब चली जो आती हवा तो एक अम्बी जो गिरी थोड़ा अपना आपके आगे, कहने लगा शुक्र है परमात्मा वाकई तेरी अकल बड़ी है, अगर इस वक्त इतने बड़े पेट के साथ और इतना बड़ा ही मुआना ना होता और वो आके नार के ऊपर पड़ता। कहने लगा नहीं परमात्मा तेरी अकल बड़ी है मेरी, हम तो भाई जब इस तरह नाद पर आके पड़े ना सिर का घोमरा फूटते तब तो परमात्मा नजर आता है। वैसे वैसे हमारी अकल बड़ी है साथियों, आत्मतत्व को समझो, कुछ लेना है विचारना है तो अब बात अकल की आदि ब्रह्मा जी की, क्योंकि हमारी तो इतनी अकल है और हम इतने गुमराह होते हैं तो ब्रह्मा सारी दुनिया की अकल का मालिक है, लेकिन इतना अहंकार ले आ गया कि वो उस ब्रह्म परमात्मा को पहचानने की बदले में उसकी परीक्षा लेने के लिए आ वो परीक्षा कैसे लेता है और गोपियां प्रेम की लीला कैसे करती है ये विषय है।
मोर मिलावे की मित्र को अक्षर राजी महाराज वो धाम के धनी अक्षाधी पूर्ण परमात्मा महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह बुद्धनिष्कलम करता राहुल नमा इमा में भी सार्वभिक समय अपने रूप मन ब्रह्म सृष्टियों को उस अखंड परम धाम में जहाँ के आत्मा कभी भी परमात्मा से जुदा नहीं हो सकती और स्वयं पूर्ण परमात्मा भी अपनी आत्माओं से कदापि जुदा नहीं हो सकते, जैसे सूरज और सूर्य की किरण का संबंध है दृष्टांत के रूप से। अब किस तरह से वहां स्वयं अपनी उन आत्माओं की लीलाओं पर अति प्रसन्न होकर के सीमा से बाहर फिदा होकर के उनको अपना सत्संग दिखाने के लिए और जब इच्छा प्रकट हुई रूहों को दुख की लीला देखने के वास्ते और दास में श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने साथ अक्षय के अंदर जो है सुंदर साथ की दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन उस परम धाम नूरमयी धाम के अंदर कदापि भी सत्ता में जा करके अक्षय कभी भी प्रेम में लीला का पात्र बन नहीं सकता और वो तल जो नूरमयी परम धाम के हैं वो कभी दुख की दुनिया में आ नहीं सकते और वो स्वयं पूर्ण परमात्मा जन्म और मरण से रहे थे, लेकिन दुनिया उसकी पहचान ना करके संसार के जितने भी देवी देव उनको भूल करके मान रही है। जैसे रात को दृष्टांत देते समय बतलाया कि दुनिया आज सारा भारतवर्ष हिंदू समाज श्री कृष्ण का जन्म मनाती है पर श्री कृष्ण का कभी भी जन्म नहीं हुआ था ना कभी होगा। जन्म वासुदेव वैकुंठनाथ जो 16 कला संपूर्ण भगवान के वासुदेव देव की को दर्शन दिए उनका जन्म हुआ। जब वह तरण लाया गया नंद जी के घर तब रोनी नक्षत्र के पश्चात जब वृक्षक नक्षत्र और मिथुन राशि हुई तो 9 बजे के समय अब नंद जी के घर लड़का पैदा हुआ था तो जब उन्होंने पंडित बुलवाए समय मिथुन राशि थी और वृक्षक नक्षत्र चल रहा था इसलिए जो है फिर उस समय के अनुसार नाम उस तरण का जो है श्री कृष्ण रखा गया, जिसके के प्रमाण आप जो रात एक दो सखियों के आने के लिए थे कि यदि अक्षराती पूर्ण परमात्मा की शक्ति नहीं थी तो श्रीमद् भागवत भागवतार भी साक्षी है कि सारे वृंदावन गोकुल के लोगों ने आकर के बधाइयां दी, लेकिन गोपियों की बधाई देने का एक रूप निराला ही था अनोखा ही था कि वो 16 श्रृंगार सज के आती है। 16 श्रृंगार एक स्त्री जो है कुंवारी कन्या, अगर तो बहुत सारी युवतियां ऐसी थी जो कुंवारी थी तो कुंवारी कन्या का काश श्रृंगार सजने का कोई कारण नहीं था, केवल यही कारण बना कि उनकी आत्माओं के जो कनी आए थे एक दृष्टांत रात आपको दे दिया। और दूसरा इस सृष्टि के वो शंकर भगवान जिनकी शक्ति और महिमा का वर्णन भी संसार के ग्रंथ नहीं गा के बता सके, ऐसी शक्तिशाली वो स्वयं जो सृष्टि के नर थे एक पलक के इशारे से संसार को मिटा के बनाने की शक्ति रखने वाले नंद के घर भिखारी बन के एक भिक्षा मांग रहे के रूप से आकर के उस पूर्ण परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, कैसे यशोदा मैया उनको लेकर के आती है और कैसे अपने मालों को जटाओं को श्री कृष्ण के चरणों में जब के अभी 2 दिन के बालक है उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं उनकी चरण रज लेकर के वैकुंठ को जाते हैं। दादा प्रचार कितने प्यार और लाड के साथ वो आत्मा के संबंध से गोपियां जो कि नंद जी के घर श्री कृष्ण प्रादुर्भाव हुआ प्रकट हुए हैं उनका जन्म नहीं हुआ, जन्म वासुदेव का था, विष्णु भगवान का था, आत्म अक्षर ब्रह्म की थी और शक्ति अक्षर की पुण्य परमात्मा की है जो सदा आनंद की लीला करते हैं। तो जितनी देर तक उनकी शक्ति उस तन में रहती है साथियों उतनी देर तक आनंद की लीला रही। जब अक्षर ब्रह्म गौलोक की शक्ति आएगी तो वो गौलोक वाला काम करेगी और जब खाली विष्णु भगवान रह जाएंगे तो वो इस संसार के कर्म कर ही ज्ञान देंगे। अब ये चीज है कि नाम तो एक ही श्री कृष्ण रहा लेकिन लीलाओं को किसी ने पहचाना नहीं। आप स्वामी श्री कृष्णानंद जी अपने श्री मुखवाणी ग्रंथ साहब के अंदर कहते हैं, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर कृष्ण ना चीने कोई, नाम एक भी दिखोत है और लीला त्रय भी दिखोत। एक कृष्ण वैकुंठ का, दूसरा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, जहां जाए सब शोक। के हकीकत में वो श्री कृष्ण जो है वो वैकुंठ में नहीं रहता। कोई भी हिंदुओं के ग्रंथों में ऐसा प्रमाण नहीं कि कोई भी मेरा सज्जन भाई अगर जानता हो बड़ी सभा मिला के उस ग्रंथ को दिखा सकता है कि वैकुंठ में कृष्ण रहते हैं। नहीं, यदि कृष्ण को वहां वास दिखाओगे तो राम का कहां से लाओ। वैकुंठ में लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी के पति कृष्ण नहीं है, लक्ष्मी के पति तो विष्णु। अब दुनिया भूल करके भाई माने तो उसकी अपनी मर्जी है, ग्रंथ तो सब ठीक रास्ता बताते हैं पर क्योंकि हमको आगे कौन रहता है, कौन विर्माण है, कौन शक्ति है, वो ज्ञान ना कोई दर्शा सका, इसलिए ज्ञान अधूरा और दुनिया उठा करके अब कृष्ण माने किसको। जैसे रात श्रीमद भागवत के प्रमाण अभी बताता हूँ, वृंदावन की क्या खूबियां भागवत में लिखी है और दुनिया इस वृंदावन में जाती। ये नहीं कि हम इनको मानते नहीं, मानते, ये मतलब नहीं कि हम कोई इनके विरुद्ध है, ये मतलब नहीं कि हम इनसे कुछ परे हैं, नहीं। लेकिन वही जो पूर्ण रूप परमात्मा है, अब सत्य को झूठ कैसे कह दे और झूठ को सत्य कैसे कह दिया जाए, इतनी सी बात तो समझने की है। आत्म सत्य है, उसका संबंध आत्मा के पति के साथ ही हो सकता है, शरीर के संबंध शरीर के देने वाले देवी देवताओं के साथ है, सबका। कौन कहता है कि नहीं मानते, बराबर इन वस्तु किसी को मानता झूठ। आनंद की लीला करती है लेकिन केवल अपनी आत्माओं के साथ। तो साथियों वो ब्रज की गोपियां, वो ब्रज की नारियां अब श्री कृष्ण जी के पास सदा जाती है, दौड़ती है, उठाती है, खिलाती है, भागती है, प्रेम करती है, चूमती है, चाटती है, नलाती है, दुलाती है, कोई कोई तरह से प्यार करता है, कोई किसी तरह से शरीर से नहीं। अब उन गोपियों के घर पति हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, वो कोई विकार की दृष्टि के पास सुले करके उसके पास नहीं जाती। उस आत्म के संबंध के साथ वो प्रेम में लीला रमन करते हुए जब आयु 5 वर्ष की हो जाती है तो विष्णु भगवान तो सदा तन धारण करके उनके लिए हाजिर खड़े। अब शंकर भगवान जब प्रणाम करके गए तो वैकुंठ में ब्रह्मा जी से जाके कहा कि ब्रह्मा किस मन में मस्त बैठे हो भाई, साक्षात पार ब्रह्म अक्षातीत की शक्ति और स्वयं अक्षर ब्रह्म है, संसार में श्री कृष्ण के तन में आकर के प्रवेश विष्णु भगवान के तन में ले चुके हैं, जाओ प्रणाम करके। अब क्योंकि जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है ना, यदि वो इलम को इलम की दृष्टि से ना समझे तब तो बुद्धि रहेगी नहीं, तो अवश्यमेव अहंकार आ जाता है। ये संसार का इलम का मद, धन का मद और गौरव का मन, भाइयों का मद, ये संसार के जो नशे होते हैं ये आदमी को भटका देते हैं। हम ब्रह्मा भी तो इसी संसार के रहने वाले थे और हमारे पास तो लिमिटेड बुद्धि रहती है, वो संसार के कुल इलम कुल ज्ञान कुल बुद्धि के मालिक थे। अब ग्रंथों के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार वो समय की नाप तो नहीं कर सके और शंकर को बल्कि कहने लगे, क्या शंकर भगवान वाकई तू बोला, शंकर तुझे क्या पता, अगर पूर्ण परमात्मा आते तो क्या मुझे ना पता चलता, ये कैसे बात हो सकती, मैं इस बात को मानता नहीं। गए तो एक दिन जब 5 वर्ष बीत गए, उठाइए भागवत तुम्हारे साथियों, प्रमाण लो, तसल्ली करो, थोक बजा करके एक चीज को देखो, निर्भर करो। ब्रह्मा को जाके नारायण नारायण वीणा बजाई, ब्रह्मा जी बड़ा स्वागत करते हैं, आओ राजऋषि कैसे आना हुआ। कहने के महाराज आपको पता ही चला स्वयं विष्णु भगवान तो गोरखीनाथ तो जा करके नंद जी के घर जरूर ले चुके हैं और उसके अंदर अक्षातीत मैं परमात्मा और अक्षर ब्रह्म की लीला हो रही है और आप प्रणाम करने तक नहीं गए।
भाई यार शंकर ने कहा तो था, पर बात यह है हमें क्यों नहीं पता चला, आप लोगों को कैसे पता चल गया? पर चलो मुझे नहीं पता चला, तुम लोगों के कहने से जाता हूँ, जाके देख लेता हूँ ऐसा परमात्मा कौन सा आ गया जो मेरे पूछे बगैर मेरे ब्रह्मांड में ठहर गया। सृष्टि है इस ब्रह्मांड का वो मालिक है, लाभ निस्तर है, कुल दुनिया की अकल का मालिक, कुल दुनिया के ज्ञान का मालिक है। वेद मूल ग्रंथ है हमारे, किसने उत्पन्न किए? ब्रह्मा जी ने। ये तो थोड़ा छोटी चीज को मानते नहीं, इसलिए इतना अहंकार यहाँ की, ये स्वप्ने की बुद्धि है, माया की बुद्धि है, इस वास्ते अहंकार देवी देवतों को भी आता, बहुत अहंकार आता है, एक दूसरे को डाल के श्राप दे देते हैं, इतना अहंकार में ये लोग जीव है। अब ब्रह्मा को जब इतना अहंकार हुआ, कह लगे अच्छा नारद तुम कहते हो, हम चल के देखे थे। अब ब्रह्मा जी महाराज वैकुंठ से आए, क्या करने के लिए? दर्शन करने के लिए नहीं आए, दर्शन करने के लिए तो शंकर भगवान आए, कितनी नम्रता लेके आए, विभूति रमा के आए, भिक्षारी बन के आए, इतना नम्रता प्यार लेकर के जब आए, तो वही रामायण भी कह रही है, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन्ह देखी। अब पार ब्रह्म अक्षरा थी तो क्या वो जानते नहीं कि हमारे पास कौन आ रहा है? जब शंकर भगवान आए तो कितने प्यार और लाड के साथ उनको, अभी दो दिन के ही बालक के दर्शन लिया, अब तो 5 वर्ष के हो चुके थे, जब देखा कि वही ब्रह्मा हमारी दीक्षा लेने आ रहा है, दर्शन करने नहीं आ रहा, कि देखें, क्योंकि ब्रह्मा नारद को क्या उत्तर देखता है, कि चलो देखें कैसा भगवान आप हमारे पीछे बगैर आ गए। आ गए भीतर गोकुल के अंदर, साथियों खुदो श्रीमद भागवत के जरा अध्ययन को संशय मिटाने के वास्ते, अब जब ब्रह्मा आ गए तो इनकी शक्ति से रामायण कह रही है कि करोड़ों ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मा शिव विरंची विष्णु भगवाना उपजे दासो अंश से नाना, करोड़ों भी नहीं कह सकते, राम भगवान कह रहे हैं स्वयं अपनी बुक से रामायण के अंदर कि वो निदानंद नेति नेति अक्षरा की पूर्ण परमात्मा की शक्ति तो कितनी ज्यादा है कि जिसका वर्णन है लक्ष्मण मैं नहीं कर सकता, असंख्य ब्रह्मा असंख्य विष्णु असंख्य शंकर जहां पैदा हो जाते और बन के मिट जाते, तो मेरी क्या औकात है कि मैं उनकी शक्ति का वर्णन कर दूं, मेरी शक्ति से हाँ। तो ब्रह्मा जी जब आए तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति उनकी आत्मा है उसके अंदर बैठी साक्षात लीला कर रही और उसके ऊपर शक्ति अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की है, जब देखा कि ब्रह्मा दर्शन करने नहीं आ रहा, ये तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है, तो ज्यादा कर्मकांड के मालिक जो ब्रह्मा, बहुत कर्मकांड के है ब्रह्मा जी, पंडितों के विद्वानों के मालिक, तो अब क्या करते हैं वो? जब ही आकर के उन्होंने देखा ब्रह्मा जी आए और गोकुल के अंदर श्री कृष्ण जी गंगा तट पे अपने ग्वालों के साथ लीला कर रहे थे, देखा कि ब्रह्मा आ गए हैं परीक्षा लेने, ग्वालों आवाज दी, किनको? ग्वालों के बच्चों को, वो जो ग्वाल थे छोटे छोटे, और किन के लड़के थे? आहीर, ये जो गाय रखने वाले लोग इनको आहीर कहते हैं। अब वो नंद के घर और ग्वालों ब्रिज के अंदर गायें इतनी, कोई घर सुना नहीं था जिस जगह के गौए ना हो, और जिनके घर में गौए थोड़ा बहुत तो भी कीचड़ ग्वालों के बच्चों के कपड़ों पर भी लगना जरूरी था, ऐसे कपड़ों वाले वो ग्वाल बाल आंखों पे कीड़े लगी हुई, इन सबको बुला करके श्री कृष्ण जी बैठ के जान भूल करके ऐसे ग्वालों को बुला दिया जिनके मुंह भी देखने को कुछ नहीं करता होगा, पर वह किसी की शक्लों से प्यार नहीं करता, वो अपने आत्मा को रस को लेते हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन से आपको बताया शास्त्रों के अनुसार गीता भागवत के अनुसार के आत्मा परमात्मा वहां छोटा बड़ा कोई नहीं होता, दुनिया के अंदर भोग भगत लगाते हैं कि भगवान, बोलो भाई, भगवान नहीं लगाते, भगत भोग लगाते हैं अपने भगवान। अब श्री कृष्ण की लीला को कौन देखता, क्या लीला करके बताते हैं, ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, कृष्ण कन्हैया के हाथ में मटकी मारने की है, अरे ग्वालो आगे ग्वाल जी से हाथ पे चले हुए आगे, लल्ला ने क्या किया, उठाया अपना हाथ, आईना मटकी के अंदर डाला, मक्खन निकाल के खुद नहीं खाते, भागवत को पढ़ के देखिए, उठा करके माथुन का पेड़ा और जिस तरह ब्रह्मा जी खड़े थे जान बूझ करके ग्वाल के मुख को लगाया, ग्वाल ने खाया, जब ग्वाल ने माथुन खाया, मक्खन कोई भी मिश्री की तरह सखत तो होता नहीं, नरम चीज होती है, जो कुछ वो खा सका वो तो खा लिया, बाकी जो जूठन गिरा और और उंगलियों पे टपका तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, ये नहीं कि इधर से सुत्ता है इधर से खा लेना, ब्रह्मा जी की तरफ हाथ करके दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं, वो जूठन जो गिरा हुआ हाथ पे था उसको क्या कौन जानेगा इस दुनिया के अंदर श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा की लीलाएं क्या है। चरम दृष्टि वाले कभी नहीं देख सकते, ना पहचान सकते हैं ना जान सकते हैं कि ये क्या अद्भुत लीला होती है। बड़े बड़े और भी आपने रहस्य देखे, बड़े बड़े भगवान आकर के दुनिया में दुनिया के भक्तों के अपने संकट दूर करते हैं, पर श्री कृष्ण की प्रेम में लीलाओं को कोई बिजली की आत्म पहचान सकती है, हर के बस का रोग। जब ब्रह्मा नहीं जान सके तो उनकी दी हुई अकल तो हमारे और आपके पास है, तो उनकी अकल से हम कैसे पहचान गए। साथियों, ब्रह्मा ने जब ये हालत देखी तो जैसे किसी को घृणा नफरत आती है और दिल में कहता है, जैसे कोई मानो बड़ा मन में एक घृणा पैदा कर ली कि ये भगवान हो सकते, अरे जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं वो कितने ऊंचे कुल में आना चाहिए और उसको रहने बहने उठने खाने पीने का ढंग नहीं होगा। ऐसे हीरो के दुकानों का जूठा मक्खन जो चाटता मिलता है ये परमात्मा कभी नहीं। ये बात दिल में संशय लेकर के साथियों, घृणा दिल में लेकर के ब्रह्मा छोड़ करके कि मूर्ख है नारद को क्या पता है, हमारे से ज्यादा अकल थोड़ा नारद के अंदर आ सकती है, नहीं ये कभी भी पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते। जब थोड़ा आगे बढ़े फिर सोचने लगे कि शंकर भगवान ने भी कहा था कि यही परमात्मा है और नारद भी कह रहा है, तो इसकी तो जान इन ग्वाल बालों और मक्खन में अड़ी हुई है, अगर यही भगवान है तो ब्रज और गोकुल के सारे ग्वाल बाल और जितने भी गौएं हैं इनको हरण करके यहाँ से ले जाते हैं, खाली इस अकेले को यहाँ छोड़ देता हूँ तो देखता हूँ ये ग्वालों के बिना जीता कैसे। आत्मनिर्भर भगवान होगा और इनको अपने ग्वाल बालों की जरूरत होगी तो लेने के लिए मेरे पास स्वयं वैकुंठ में आ जाए, पढ़ लो भागवत में लेके आ गए। तो मैंने कल भी बताया, परसों भी चार दिन से बता रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि के नाथ हैं और इनके पास बराबर शक्तियां रहती है, कोई कम पेश नहीं। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी शक्ति के द्वारा कुल गोकुल और ब्रज की जितनी गौएं थी और जितने ग्वाले थे और जितने गौओं के बछड़े थे सबको हरण कर लिया, और हरण करते ही जो ही चलने लगे तो उधर उस तन के अंदर कौन बैठा है, अपन तो विष्णु भगवान भी ये काम कर सकता, लेकिन लीला इस वक्त विष्णु भगवान नहीं कर रहे, लीला स्वयं अक्षरातीत उत्तम पुरुष कर रहे हैं। तो अपने प्रेम में शक्ति के द्वारा तुरंत एक क्षण के अंदर ही ज्यों की त्यों गौएं, ज्यों के त्यों बछड़े और ज्यों के त्यों ग्वाल, बल्कि पहले गौएं और ग्वाल और बछड़ों में शायद इतना प्रेम नहीं था जितना अब के वालों में था, क्योंकि अब के जो बनाए हुए हैं वो क्षाती की इच्छा से, इसलिए प्रेम उनके अंदर गौ के तभी कारण था कि जब जमुना तट पे बांसुरी बजती थी तो गौ भी भाग के आते, ग्वाले भी भाग के आते थे, बछड़े मोर पशु पक्षी बांसुरी को सुनने के लिए जमुना तट पे आया करते थे। अब क्या हो गया, ब्रह्मा जी महाराज उन सबको हरण करके ब्रज के बाहर एक गुफा में केंद्रा में पहाड़ में जा करके छुपा के उनको और बाद में पत्थर रख के अपने वैकुंठ में चले गए कि अगर ये भगवान है तो इनको लेने के लिए मेरे पास आ जाए, साक्षी यही चले गए। अब उधर तो क्यों की क्यों लीला, गौएं चल रही है, ग्वाल बाल खेल रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं, वैसी की वैसी लीला हो गई। जब एक साल बीत गया तो नारद जी का काम तो आप जानते हो कि किसी को शांति से नहीं बैठने देता, ये मन को ही नारद के ये अंदर मन है ना, ये एक अंश है उस नारद का, ये तुरंत गए वहां ब्रह्मा वैकुंठ के अंदर गए नारद जी महाराज, नारायण नारायण ब्रह्मा के और राज ऋषि कह रहे महाराज आप दर्शन करने के लिए नहीं गए, कह रहे भाई दर्शन करने के वास्ते तो हम गए थे, कुछ नहीं वो हमें तो नहीं परमात्मा देता, और अब सुनाओ उस परमात्मा का क्या हाल है, वो सुंदर अकेला मारा मारा फिरता होगा। कह रहे सरकार क्यों, वो तो गोकुल ब्रिज में जो की तो गंगुएं भाग भाग है, लगे सरकार चल के देखो। अब फिर आए ब्रह्मा देखने, अभी भी दर्शन के लिए नहीं आ रहे, अभी भी देखने के लिए आ रहे हैं कि अच्छा मैं चल के देखता हूँ ये कैसे हो सकता। ब्रह्मा जी फिर आ गए जब फिर आ गए तो फिर उसी दिन वाली जो एक साल पहले लीला की थी, स्वयं श्री कृष्ण जी ने माखन की मटकी रखी, आए बालो श्री सरकार आजा लाला, फागा चले आए हिलाला गोकुल ब्रिज के, तुरंत वही माखन निकाला और त्यों का त्यों वही लीला जब करके बताई, तो जैसे किसी को टांग टांग कसना होता है ब्रह्मा को, और जो है दिन में वो आ गया कि वहां मुझे चढ़ाने के वास्ते ये रोज ही रोज हनुमान की ऐसी लीला करते हैं। और फिर के लिए देखे हैं, मैं तो सारी गंगों को ले गया था, ग्वालों को ले गया था, बछड़ों को ले गया था, ये कहां से आ गए? मैं न ले जाके अपनी गुफा में देख के आता हूँ, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? तो वो गुफा में देखने के लिए गए। साथियों पढ़ो वृद्ध के तरफ भागवत खोल करके पढ़ो, ब्रह्मा जी गए और जाके उस गुफा का जो पत्थर हटाया तो अंदर क्या देखते हैं, गौएं भी वही थे, ग्वाल भी वैसे और बछड़े भी वैसे, जो की जो लीला वो भी खेल रहे। सोचने लगे क्या बात है, मेरी आंखें क्या चली गई, यहाँ भी गौएं वहां भी गौएं, दो जगह कैसे हो सकते हैं? मालूम होता मुझे कुछ भ्रम सा हो गया। गौएं यही अपने हाथ से पत्थर पे रख दिया और फिर देखने के लिए गोकुल में चले। साथियों जब गोकुल में आकर के देखा तो वही श्री कृष्ण जी ज्यों की ज्यों लीला ग्वाल बालों के साथ गौएं चल रही, वही लीला ज्यों की ज्यों हो रही थी। अब ये बात देख करके कुछ अभिमान को ठोकर लगी कि ब्रह्मा तेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, पर अच्छा एक बात तो और देख ले कि वहां भी गौएं हैं तो नहीं। फिर गए दोबारा, साफ भागवत में लिखा दोबारा ब्रह्मा जी जब गए और जाके उन गुफाओं के अंदर सारी चीजों को देखा, बहुत पश्चाताप करके दिल में अहंकार टूटा, तो सोचने लगे जिन ग्वालों के जूठन को श्री कृष्ण अक्षरा तीत स्वयं खाते हैं, जब तक ये उनको लगा हुआ भोग का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक तेरा नैया भाव सागर से बाहर। ये ब्रह्मा जी ने सोच लिया, बिल्कुल फैसला डिसाइड कर वसीर ले लिया कि अब उनका प्रसाद लेना चाहिए और उनके चरणों में जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अभिमान फिर आ गया, अरे प्रसाद ही तो लेना, प्रसाद लेना कौन सी मुश्किल बात है, दंडवत प्रणाम करे शर्म ना है कि जाके पहले तो भगवान की परीक्षा ली अब दंडवत प्रणाम करेंगे? नहीं, ये बात गलत है, पर प्रसाद के बिना भी गाड़ी चलती नहीं है, अरे प्रसाद लेना कौन सी बड़ी बात है, अपनी अकल से प्रसाद लेंगे कैसे? अरे ग्वाल बाल जमुना तट पे बैठ के हमेशा खाते पीते हैं, वहां चल के कौवा बन के बैठे। ब्रह्मा जी आ गए एक वृक्ष पर सामने और उधर ग्वाल बाल खाने के लिए बैठे थे, सबको पत्थर परोसती गई, सब सामान मक्खन मेवा मिठाइयां इत्यादि शीघ्र रसोईया जो कुछ आहार बना था सब लोग परोस रहे हैं। खाना खाने के जब तैयार हो गए, नजर अचानक कृष्ण कन्हैया के सामने पड़ी, देख लिया ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा समझते हैं कि हम सबसे बड़े हैं क्योंकि इस विमान की अकल मेरे पास है, पर वो ये नहीं जानते थे कि जिनके एक इशारे से करोड़ों विमान असंख्य ब्रह्मा विष्णु बन जाते हैं वो सामने शक्ति बैठी है। दिल ने पहचाना भी सी, जीव ने शक्ति भी दी पहचानने की, लेकिन अभिमान जो था वृत्ति का वो फिर नहीं है। कौवा बन के जब बैठ गए अखबार बार खाने लगे, कौवा लगा काए काए करने, बस अभी खा के उठेंगे पत्तल फेंकेंगे, एक दाना चाहिए बस, श्री कृष्ण अक्षरा तीत के जूठन प्रसाद का एक दाना भी हमको भाव सागर दे, पार करता इतनी शक्ति उनके प्रसाद के अंदर। अब ब्रह्मा लेने के लिए तैयार बैठे, काए काए कर रहे, खूब अपनी चोट को भी साफ कर रहा है। श्री कृष्ण जी जब ग्वाल बाल मस्ती से खा रहे, कहने लगे ग्वालो जिस सर तुम्हें बता कौन सा दिन है? सरकार दिन बाद मेरे खा पी ली दो, आज अन्नपूर्णिमा का दिन है। अब बाल ग्वालों ने कभी अन्नपूर्णिमा का नाम नहीं सुना था, वो अन्नपूर्णा क्या होती? क्या लगे देखो ध्यान के साथ सुनो, आज अन्नपूर्णिमा है, आज भगवान अन्न हमारे पर नाराज हो जाएंगे यदि कल खाना चाहते हो ये मेवा मिठाइयां मक्खन, तो आज पत्थर के ऊपर कुछ मत छोड़ना, अन्नपूर्णिमा अन्न भगवान की पूजा, अच्छा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सरकार। सब ग्वाल बाल जितने भी थे खूब पत्थरों को चाटे, अपना खूब अच्छी तरह से खा लिया, कुछ नहीं रहने दिया। शिक्षक से कहने लगे नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, पत्थरों को दोरा कर लो। सब ग्वाल बालों ने दोरा कर दिया, कहने लगे एक बार और दोरा दो, फिर दोरा दिया, कहने लगे लो एक बार और कष्ट कर लो फिर कर दो। अब आज तह जब बन गई पत्थर की इतनी हो गई तो कौए सब खड़ी थी, कहने लगे अपने अपने पत्थर अपने अपने गाय के मुख में डाल। जब ग्वालों ने अपने अपने पत्थर गाय के मुख में डाल दी तो ब्रह्मा बेचारे देखते रह गए, क्योंकि अगर तो पत्तल को फेंक दिया जाता तो पत्तल के नीचे के पत्तों के नीचे कोई जूठन का तनका चला ही जाता। अब ब्रह्मा जी फिर भी इतनी बोने के बाद भी साथियों ये बातें सोचने विचारने की है कि जो भगवान इस दुनिया की कुल बुद्धि का मालिक है वो यदि पुण्य परमात्मा की लीला को अपनी अकल से नहीं समझ सका तो क्या हम संशय पैदा करके और अपनी अकल से उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। यही कारण है कि हमें चाहे 100 साल भी इस धर्म में आए और तात मंत्र उसका लिए भी बीत जाए यदि दिल के संशय निवारण नहीं करेंगे तो उनकी लीला का रस पान डाल नहीं सकते। हाँ संशय निवारण करने चाहिए जहां तक कि उनकी शक्ति की पहचान का सवाल है। वो आपके सामने इतने दृष्टांत रख दिए आगे बढ़िए क्या होता। ब्रह्मा कहता रहे क्या हो गया, अरे पत्तल ही तो डाल दिए हैं अभी पानी पीने तो जाएंगे गंगा जी पर और वहां जाके कुल्ला तो करेंगे, वो कुल्ला किसके मुंह में डाल देंगे, वहां तो वो मुझे कभी कर नहीं ले लेंगे वहां, क्योंकि इंसान जब कुल्ला करता है तो जरूर ही बात हम रोज करते हैं, हम लोग देखते हो कि कुल्ले के साथ कुछ ना कुछ मुख के अंदर से जो दांतों में पड़ जाता है थोड़ा बहुत अवश्य निकलता है। तो वो सोचने लगे कि चलो ये प्रसाद तो और भी अच्छा होगा क्योंकि भुक्ता लगा हुआ होगा तो मैं एक मछली बन के बैठता हूँ। साथियों वो ब्रह्मा जी जा करके जब मैं मछली बन के बैठ गए और जिस वक्त बार बार श्री कृष्ण जी दमन तट पे गए वो अमृत से उज्ज्वल जल और मछली से मीठा अनेकों प्रकार की मछलियां और भी थे। ब्रह्मा भी उसने एक मछली बन करके जाके सुनहरी परों के साथ फुर्र फुर्र करके लगा घूमने। श्री कृष्ण जी जब गए देखा कि वाह ब्रह्मा यहाँ आ गए, खूब चिंता मत कर, सब ग्वाल बालों को बुला लिया कि ग्वाल बालों आ जाओ भाई जल पीना है जरूर पीना है, नहीं प्यास आज तो भी पीना है और कुल्ला भी सबने करना है लेकिन ध्यान के साथ आज अन्नपूर्णिमा है। तो ग्वाल पाल कहने लगे सरकार वो अन्नपूर्णिमा तो साली हमने मरोड़ बना के गाय के मुख में डाल दी थी अब कहाँ अन्नपूर्णिमा रहेगी। कहने ना 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 अगर गलत काम करोगे कल को खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं भगवान जैसे कहोगे वैसे करें। बच्चों को मार के माताएं सिखाना चाहती है नहीं, बच्चे की जो बहुत प्यारी चीज है ना उसको ये कह रहे ये काम करने के लिए नहीं देगा अवश्य करके देगा। तो तुरंत श्री कृष्ण जी की इतनी बात कहने पर ग्वाल वालों ने क्या सुना कि देखो भाई पानी पीना खूब पियो हाथ के साथ और कुल्ला भी करना है कैसे जल ले लो जितना पहले पीना है पी लो और आखिर में जब कुल्ला करो दो तीन बार जल को आगे पीछे करो और बाहर नहीं फेंकना वो कुबला करके अंदर सटक जाना। अब ब्रह्मा बिचारे तो बड़ी कोशिश कर रहे थे, ग्वाल वालों ने जब इस तरह से जल पी लिया और कुल्ला करके सब कुछ अंदर दे गए ब्रह्मा को प्रसाद नहीं हुआ। कोटि यतन ब्रह्मा कर थाके सो जूठन नहीं। साथियों ये बातें हैं समझने की कि जिनके प्रसाद के लिए ब्रह्मा सृष्टि के नाथ करोड़ों यत्न करते हैं च्यूटी बन के आए कई रूप उन्होंने धारण किए लेकिन फिर जब अंत में अहंकार टूटा तो बड़ो भागवत में आए क्या रूप लेकर के मुख में घास का तिनका। पांडव भागवत में ये शब्द लिखे ब्रह्मा जी मुख में घास का तिनका लेके आए क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण जी को गौएं प्यारी थी और गौएं क्या खाती थी घास। इस वास्ते में एक गाय का रूप मान के दऊं और घास का तिनका लेकर के दऊं तो वो अपनी गौओं पर तो दया करते थे। साथियों भागवत स्पष्ट कहती है कि जब ब्रह्मा ने यह हालत अपनी बताई मुख में घास का तिनका आकर सृष्टि के नाथ है उन्हीं के हुक्म को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे इतनी सजा काफी थी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके तब 5 वर्ष के श्री कृष्ण पे दंडवत प्रणाम करे। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा उसके खड़े हो गए क्षमा मिलेगी लेकिन अभी नहीं, सारी सृष्टि से ज्यादा अकल तुझको देके भेजा था इस दुनिया में। ब्रह्मा को है ब्रह्मा विष्णु को भी इतनी शक्ति नहीं दी थी बुद्धि की, शंकर को भी इतनी शक्ति नहीं दी थी, वो नम्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे और तुझे क्योंकि बुद्धि दे दी तो तूने इतना अहंकार कर लिया। जाओ जब तक ये सृष्टि ध्यान के साथ खड़ी रहेगी तब तक तुझे और तेरे बनाए हुए ज्ञान को तो दुनिया लेकर के चलेगी, वो मेरी प्रेम में लीला का रसपान कदापि नहीं कर सकेगी क्योंकि तेरी बुद्धि से बनाए हुए ग्रंथ भी अहंकार के ग्रंथ हो। क्षमा मिलेगी सब सृष्टि के बाद में अग्नि। जाओ हुक्म देने की जरूरत थी, कह दिया क्षमा मिलेगी चिंता मत करो, लेकिन अग्नि सबसे लास्ट। ब्रह्मा जी वापस चले गए, चलिए फिर प्रेम की लीला शुरू हो गई। इसी तरह से 3 वर्ष और बीत गए। जब 8 वर्ष हुए, एक दिन कौन सा दिन आ गया, इंद्र पूजन का दिन आ गया कि सारे गोकुल वृद्ध नारी और भारतवर्ष के लोग इंद्र का पूजन किया करते थे। आप श्री कृष्ण रक्षा की पुण्य परमात्मा देखते हैं कि मेरी आत्माएं यहाँ संसार में आकर के तन धारण करके इस माया के बंध में फंस रही है, और यदि मैंने इनको नहीं बताया कि इनकी पूजा नहीं करनी तो ये परमधाम में चल के कह देगी कि प्रभु आप हमारे साथ है, हमको कह देते तो इसलिए अपनी जिम्मेवारी से हम बड़ी हो जाए। तो क्या किया, सब ग्वाल बालों और उन गोपियों ने एक दिन पहले से ही इंद्र पूजन के वास्ते क्या कर दिया, धर्म कड़िया रख के अपना साधो समान भोग इत्यादि जैसे माताएं बनाया करती है सब बनाने लग गए। तो श्री कृष्ण जी गोपियों से पूछते हैं, गोपियों क्या बात है, किसी की शादी है, किसके लिए आज सारी मेवा मिठाई चिकन मसूरिया तुम घर घर में बना रहे हो। कहने के भगवान तुम्हें नहीं पता, कहेंगे क्या बात है, कल इंद्र पूजन का दिन है। क्यों भाई तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो, सावधान हो के एक बात को समझने वाली बातें हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि का अहंकार और अब इंद्र का भी परीक्षा ले लीजिए जरा, ग्रंथ एक शब्द भी इधर से उधर भागवत का नहीं हो सकेगा। क्या होता है, कह लगे सरकार इंद्र पूजन का दिन है। पूछने लगे क्यों इंद्र की पूजा करते हो, कहने के भगवान आपको नहीं पता ये गोवर्धन पर्वत जो सामने है इसके ऊपर हमारी धरती है और उस धरती के अंदर हमारे खेत हैं। खेतों में जब घास उगता है तो हमारी गौएं चरके आती हैं, गौएं दूध देती है तो वो माखन आपको खिलाती है, हमारे ग्वाल बाल भी उनसे पढ़ते हैं, वहां के खेतों का अनाज आता है तो हमें और हमारे जानवरों को खाने को मिलता है। यदि इंद्र की पूजा नहीं करें और वो समय पर वर्षा नहीं करेंगे तो ये अन्न हमको कभी भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस गरज से हम इंद्र की पूजा करते हैं। वो प्रसन्न होते हैं, यदि पूजा ना करें तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न पूजा बदले में प्रसन्न होते, ना पूजा करें तो ये हमें श्राप देके निराश कर देते। साथियों इनको हम भगवान मानिए, हम किसी के लिए पहले भी बताया था श्री प्राणनाथ जी ने आकर के दुनिया को पारखी ज्वेरी बनाया है, किसी की निंदा नहीं। अगर सत को सत कहने में भी कोई निंदा कहता है तो फिर उससे हम कभी घबराते ही आप ग्रंथ रखो और पढ़ के देखो, एक शब्द भी अगर इधर उधर करूं तब तो आप कहो जी गलत लिखा, आप इंद्र करता क्या है ध्यान के साथ सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाह, अरे जब तुमको तुम्हारे खेत गोवर्धन पहाड़ पर खेती होती है, गोवर्धन पहाड़ पर गौएं चलती है, गोवर्धन पहाड़ पर ग्वाल बाल खेलते हैं, गोवर्धन पहाड़ पर अनाज देता है तुमको गोवर्धन पहाड़ है, तो पूजा पर गोवर्धन पहाड़ की क्यों नहीं करते, इंद्र की क्यों करते। कहने लगे सरकार वो तो एक पत्थर है, जमीन है, उसका कोई स्वरूप थोड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अरे बाबा असल में जो तुम्हारा परमात्मा है वो तो गोवर्धन पहाड़ है और वो तो सदियों से भूखा है, लेकिन तुम पूजा गुप्त में इंद्र की कर दो, इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा वो देवता साक्षात गोवर्धन पहाड़ उसको भोग। और सब एक अजब अजूबे वाली बात थी, गोपियां भी हैरान होगी कि कभी पहाड़ के अंदर से भी भगवान निकलता है, कहने लगे हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। साथियों दूसरे दिन जब इंद्र पूजा का दिन आया, सब ग्वाल बाल और सब गोपियां और ब्रज के कई तमाशबीन लोग भी, क्योंकि अपने अपनी अकल के लोग होते हैं, कई तमाशबीन भी हमारे जैसे रहते हैं, वो भी साथ चल पड़े कि वाह भाई देखे गोपियों ने क्या नाच तमाशा बना रखा है, कृष्ण कैसे उस पहाड़ में से गोवर्धन देवता निकालता, आज हम भी चल के देखेंगे। साथियों कौन उनके स्वरूप को जाना, अपनी अकल से कौन पहचान सकता है, उनके शब्दों से उनकी वाणी से उनको पहचाना जा सकता। अब ध्यान के साथ सुनिए, श्री कृष्ण जी लेकर के गोवर्धन पहाड़ के पास गए, बस आंखें इशारे करने की देर थी वहां कोई हुक्म देना थोड़ा, जब स्वयं अक्षरा पीते इशारा करते साथ ही क्या हुआ कि उस गोवर्धन पहाड़ के ऊपर एक उनकी शक्ति का स्वरूप बैठ गया। जैसे आज ये कंपनी बाग इत्यादि वगैरह में जाके देखिए प्लास्टर के ऐसे ऐसे रूप बना दिए गए हैं कि वो मिनट मिनट में मुख खोलते रहते हैं। तो जब ग्वाल बाल और गोपियां अपने थाल भोग के लड्डू पकवान शिकंज जो बना रखे थे वो सामने जाके देखा तो एक बड़ा सुंदर देवता का रूप लेकर के बैठा हुआ सब गोपियां हैरान हो गई। ग्वाल बाल हैरान हो गए कि यहाँ तो हम रोज गौएं चराने आते थे, ये भगवान यहाँ तो कभी नहीं होते थे। सामने जाके तिलक किया, हाथ चढ़ाए और थाल लेकर के सामने रखे, क्योंकि इंद्र की तो मूर्ति का पूजन होता था। तो भगवान कहने लगे ऐसे नहीं है खाएंगे, थाल आगे करो। अब क्यों जो गोपी थाल आगे करे वो एकदम वो खोल दे, तो भगवान कहे तो बाबा सदियों का भूखा एक लड्डू खाने वाला भगवान के लिए। अब जितना भी गोकुल ब्रिज की कुल सामग्री बनी हुई थी, थालों पे थाल सब गोपियां आती चली गई। और मेरे जैसे कमबख्त बुद्धि वाले भी तो वहां बैठे थे, सोचने लगे ये पेट है कि नीचे सुरंग खोद रखी है, इतने थाल ये जा कहां रहे, शब्द अकल कहां की है, शमशे वाली दुनिया की है। तुरंत भागने लगे कि यारों नीचे जरूर कोई कुआं होगा, गजब खुदा का सारे ब्रिज के लड्डू ये जा कहां रहे। लेकिन ना तो वहां कोई कुआं था, ना कोई वो खंडक थी, वो तो उनकी बाथरूम की लीलाओं को कौन जाने क्या चीजें थी ये उनके वास्ते। सारा पूजन करवा दिया गोठन का और सारों को किसी को आगे तो इंद्र की पूजा या देवताओं की पूजा तो पुजारी जी ने एक लड्डू उठाया, मूर्ति के मुंह को आधा थाल नीचे उड़ा दिया और आधा वापस दे दिया, भोग लगवाने में मिटावे पुजारी ठीक है आधा पहुंचा दे देता। आज प्रसाद का नाम निशान भी वापस नहीं मिला, क्योंकि थाल के थाल ही सारे उड़ेल दिए गए, सब लोग वापस चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं देखा तुम्हारा भगवान कितने सदियों से भूखा डरता सारा का सारा खा गया, अभी तो उनका नाश्ता पानी नहीं हुआ होगा। कह लगे देखना आपकी बाहर बहुत अनाज पैदा होगा। अच्छा भगवान जैसे आपकी इच्छा। अब दो तीन दिन जब बीत गए तो लड़ाई कराने का काम नारायण भगवान जी महाराज लेकर के अपनी वीणा चले गए स्वर्ग में। नारायण नारायण पहुंच गए, इंद्र भगवान ने स्वागत किया, राज ऋषि महाराज आई आइए, क्या बात करिए थोड़ा खूब आनंद में कहां से आना हो रहा, तथा मृत लोग से आया हूँ। क्यों भाई सुनाओ, हमारा इंद्र पूजन का दिन था, हाँ सदा बिल्कुल सबने पूजा की है, पर वो आपको नहीं पता वो दूजी गांव भी गलती देकर मेटी करते भागवत के शब्द पढ़ी थी। नारद ने जाकर के ऐसे शब्दों के साथ नमक में साझा लगा के उसको जलाया, ऐसी जलने वाली बात कह दी कि महाराज क्या आप दुनिया के परमात्मा बने फिरते हो, इधर गोकुल के अंदर नंद के घर वो कृष्ण का चोपड़ा सा आया हुआ है, वहां के लोग उनको परमात्मा मानते हैं, उन्होंने तुम्हारी पूजा नहीं की और उन्होंने गोवर्धन पहाड़ की पूजा। साथियों ठीक है, बुद्धि शब्द परमात्मा ने दी है, हम कहते हैं